होशे अध्याय सात। परमेश्वर उनके लिए आगे कहता है, होशे अध्याय सात पद एक और दो, जब मैं इसराइल को चंगा करता हूं तब एप्रेम का अधर्म और शमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराइयों को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। हम प्रायः भूल जाते हैं कि परमेश्वर को सब याद रहता है। आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते। आप सोचते हैं कि आप बच गए, परंतु ऐसा नहीं है। वे सोचते ही नहीं थे कि यहोवा उनकी सारी बुराई को स्मरण रखता है। होशे अध्याय सात पद तीन और चार, वे राजा की बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सबके सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गरम करता है। ये उनकी काम वासना के संदर्भ में कहा गया था। होशे अध्याय सात पद चार में आगे लिखा है, जिसको पकाने वाला गरम करता है, पर जब तक आटा गूंदा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वो आग को नहीं उकसाता। वहां के पकाने वाले रात को ही आटा गूंद कर और तंदूर में आग लगाकर सो जाते थे। सुबह जब वे जागते हैं तब वे तंदूर पूरा गर्म हुआ पाते हैं और आटा भी खमीर होकर रोटी के लिए तैयार हो जाता है। परमेश्वर उनकी काम वासना की तुलना तंदूर से करता है। होशे अध्याय सात पद पांच, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाक मधु पीकर चूर हुए, अर्थात इतनी अधिक पी ली थी कि वे उल्टी करने लगे थे, अत्यधिक नशा। होशे अध्याय सात पद पांच और छह, उसने टट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर की नाई तैयार किए रहते हैं। अपने पड़ोसी की पत्नी या किसी अन्य स्त्री की लालसा में रहते थे। होशे अध्याय सात पद छह और सात, उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वो भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर की नाई धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। परमेश्वर की इसराइल से ये शिकायत है, जिसके कारण वह उन्हें दंड देगा। होशे अध्याय सात पद आठ, एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। रोटी एक तरफ से जल गई परंतु दूसरी तरफ से कच्ची है, वो खाने के योग्य नहीं है, उसे फेंक देना ही ठीक है। एप्रेम ऐसी रोटी ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। होशे अध्याय सात पद नौ, परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला परंतु वो इसे नहीं जानता। आपको शिमशोन की कहानी ध्यान होगी। उसने कहा था कि वो फिर से सामर्थी होगा, परंतु उसे पता नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा उसे त्याग चुका है। वो बड़े दुख की बात है कि लोग सक्रियता दिखाते हैं जबकि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा उनके साथ नहीं है। हम सब अच्छा ही करते हैं, हम धार्मिकता को निभाते हैं, परंतु हमारे मन में क्या है? हम नहीं जानते कि सामर्थ हम में से जा चुका है। होशे अध्याय सात पद नौ में आगे लिखा है, उनके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वो इसे भी नहीं जानता। वे नहीं जानते कि उन पर क्या आ पड़ा है। होशे अध्याय 7:10-11। इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और ना उसको ढूंढा है। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। पंडुकी या फक्ता एक मूर्ख पक्षी है। वे ना तो अपना घोंसला तरीके से बनाते हैं और ना ही सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं। आप आसानी से उसके अंडे निकाल सकते हैं। वे फिर भी घोंसले में बैठे रहते हैं। आप उन पर गुलेल से मार कीजिए, वे बैठे बैठे देखते रहेंगे। वे बड़े ही मूर्ख पक्षी होते हैं। परमेश्वर एप्रेम को एक मूर्ख पंडुकी कहता है, जो कभी तो उड़कर अशूर देश जाती है और कभी मिस्र देश की ओर जाती है। वे मनुष्य की सहायता खोजते हैं, ना कि परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है, होशे अध्याय 7:12-16, जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसा ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यनाश होए, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाकमधु पीने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूं, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके टट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। ये एप्रेम और यहूदा के लिए परमेश्वर का वचन था।